और फिर देखिए आगे ये है वो दुआ जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ। हम मुसलमानों को तो इब्राहिम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जन्नत में जाकर कि आपने ये दुआ मांगी क्या, रब्बना वबसफीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति कबयुअल्लिमुहुमुल किताब वलहिक्मा वलहिक्मत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठा जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां संवारे, तू बहुत गालिब और हिकमत वाला है। आप देखिए इस एक आयत पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी, खुशी हो रही है आपको? इब्राहिम कौन थे? नबी चुने हुए। दुआ कब मांगी? खाना काबा बनाते हुए। कबूल कब हुई? 4000 साल बाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना 4000 साल का। हम क्या कहते हैं, हाथ उठाए अल्लाह जी दे 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 दे, शाम तक देख रहे हो तो मिला क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। हम तो ऐसे लगते जैसे वो किसी होटल में जाके मेन्यू कार्ड दे के ऑर्डर देते हैं ना, देर हो रही है, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, खाना ही नहीं आ रहा। तो याद रखिए अल्लाह बादशाह, अल्लाह मालिक है, वो दे दे पलक झपकने में दे दे, वो ना दे वो 1000 साल बाद दे, कभी मायूस ना हो। और दूसरी चीज इस आयत में काबिले गौर है, और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्किंग मेथडोलॉजी। मुझे ऐसे लगता है कि आज फिर इंसानियत उस नबी को तरस रही है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, हर वो खराबी थी उस दौर में जो आपको आज के दौर में दिखती है। फर्क हो सकता है, अंदाज फर्क है, इंटेंसिटी का फर्क है, लेकिन मुआशरा दलदल में फंसा हुआ था। औरत मर्द की फर्क पहचान खत्म, बेहजाई, बदकारी, सूद, करप्शन, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं दिखता, या अल्लाह का नाम लेते थे रस्मी दीनदारी थी। आज दोबारा इंसानियत को जरूरत है, लेकिन आज नबी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी थे। लेकिन आज नबी के उम्मतियों और मुबल्लिगीन और उस्तादों को जो काम करना है वो इस आयत के मुताबिक करना है, यतलू अलैहिम आयातिक। आज ये बिगड़ी हुई नेशन जो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बिखरी हुई भेड़ों की तरह फिर रही है ना, उसका तरीका इलाज है। नंबर एक, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाएं, जो इस वक्त आप भी सुन रहे हैं। वयुअल्लिमुहुल किताब, इल्म दीजिए, सारी उम्मत को कुरान का पानी दें। वल हिक्मा, और हदीस सिखाएं। वयुज़क्कीहिम, और तज़किया। ये चार काम आज जिस आलम दीन ने कर लिए उसका बड़ा मुकाम है अल्लाह के यहाँ। आज के दौर में जिस प्लेटफॉर्म से लोग कुरान की यही तालीमात आम करने की कोशिशों में कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मुकाम है, चाहे दुनिया में कुछ फायदे नजर आए कि ना आए। दुआ कीजिए कि अल्लाह उम्मत को इस सारे तरीके पर जोड़ दे। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सा। अब कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, इसके सिवा आखिर कौन ये हरकत कर सकता है? आप देखिए कि इब्राहिम का तरीका कौन सा था, एतात का, फरमाबरदारी का। तो अल्लाह ताला कहते हैं बड़ा ही बेवकूफ शख्स है जो इब्राहिम के तरीकों से हटे। आज हम क्या कहते हैं, मौलवी, मुल्ला कल्चर, ये एक्सट्रीमिस्ट, ये फनेटिक्स। अल्लाह ऐसे लोगों को बेवकूफ कहते हैं जो इब्राहिम के तरीकों से मुंह फेर ले, हम ऐसे लोगों को मॉडर्न कहते हैं, साहिब्स कहते हैं। और फिर उसके बाद अब एक तड़प की बात है, और वो क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ किस तरीके से फरमाए, वलकद इस्तफईनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था। वल्लाह ही इस पे 3 सेकंड तो कम से कम रुकिए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अगर तूने हमें भी आज अपने काम के लिए चुन लिया। क्या हम इनकार नहीं कर सकते थे? देखिए इस वक्त भी तो हम इतने पुरसकून माहौल में बैठ के ये बात सुन रहे हैं। आप सबको नहीं पता जो यहाँ सुनने आए हैं, इस वक्त इस सुनने के पीछे मुबालगा ना करूँ ना तो सैकड़ों नहीं तो कम अज कम बीसियों से भी बीसियों सिस्टर्स हैं जो इस वक्त ऐसे खड़ी हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को लेकर कि जहाँ से 19 से 20 बात होती है तो ऐसे गड़बड़ शुरू हो जाती है। कितने मीडियम्स पे इस वक्त ये दौरे कुरान जा रहा है, कितनी ऑन साइट लोकेशंस हैं दुनिया में, कौन कर रहा है? जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपने काम के लिए चुन लिया। दुआ करें रब्बाना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। और आज मैं इस कुर्सी को खाली तो करके देखूं, वल्लाही कल इससे अच्छा बंदा आएगा इस कुर्सी पे। कोई ना अकड़े, कोई धौंस ना दे, कोई मजबूरियों का रोना ना रोए, कोई किसी के सर एहसान ना जताए। आओ तो शौक से आओ, करो तो मोहब्बत से करो, नहीं तो मोहब्बत से रुख्सत हो जाओ। आप और मैं अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपने इज्जत बख्शी इस हॉल को, आपने इस कुरान को चूज़ करके हम सबको मौका दिया कि हम आपकी खिदमत करें। लेकिन यकीन करें, कुर्सी एक भी खाली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आज अगर आप हैं, कल नहीं होंगे, इस पे कोई और बैठेगा। दीन की खिदमत करने वाला सबसे पहला वो शख्स होता है जो दीन सीखने आता है। आपने आज इस कुरान को थाम कर वल्ला ही दीन को थाम लिया है। आज इन हाथों को ये कुरान पकड़ाने की ज़रूरत है। पहले हम सीखने के लिए पकड़ते हैं, फिर एक वक्त आता है अल्लाह में सिखाने वालों में ले आता है। आज नियत करें, जाके अल्लाह से दुआ करें, रोएं कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी को ज़ाया ना करना, अल्लाह मुझे अपने काम के लिए चुन ले, और आखिरत में इनका शुमार सालेहीन में होगा। अल्लाह ने कितना चुना इब्राहिम को, कोई दुरूद नहीं पूरा होता जब तक अल्लाह बारिक अला मोहम्मद के बाद कमा बारक तला इब्राहिम ना हो। ए अल्लाह, इब्राहिम पे रहमतें कर, सलामतियाँ कर। आप देखिए, हरम में जाएं, खाना काबा का हर रिचुअल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घर से जुड़ा हुआ है। ये है कुर्बानियाँ। यहाँ बात करके देखिए, इब्राहिम के लिए कितना आसान था ज़िंदगी गुजारना। और इनके ऊपर हम अपनी सुपीलुल जन्ना में सूरह अल आराफ में एक नोट छोड़ती हूँ मैं अक्सर, इनकी डिटेल, कब पैदा हुए, कितनी लंबी उम्र थी, क्या थी। इतनी ही औसत उम्र थी जितनी आम होती है, 70-80 साल या उससे करीब कर ले, 100 लगा ले। क्या इब्राहिम के लिए ये चांस नहीं था? खूब बड़ा सा बिजनेस रन करते, फ्रेंचाइजेशन होती, एक जहाज से उतरते, दूसरे जहाज में बैठते, बहुत सारी कंपनीज के सीईओज होते। आज कहाँ होता उनका नाम? मिलियनेरियंस में होते, बिलियनेरियंस में होते। क्या आज इब्राहिम की ये तारीफें हो रही होनी थी? बस इसको ले लीजिए, शैतान हमेशा ये कहता है दुनिया बनाओ, दुनिया बनाओ। जो माल पहले से होता है कहते और कमाओ, जो घर की दौलत पहले से बड़ी पड़ी है, रखने की जगह नहीं कहते और लाओ, कपड़े पहले भी उनको कहते और भरो, जो है उसी को और भरना चाहते हैं दीन और इल्म से। कोरे कहते हैं वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, मसरूफ बहुत है। इब्राहिम ने घाटे का सौदा नहीं किया। ये है असल में टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। हम सबके पास अभी मौका है, इब्राहिम का चला गया, इब्राहिम ने अवेल कर लिया। कामयाब शख्सियत, एक शख्स वो काम कर गया जो पूरी कौम भी नहीं करती। अपने लिए दुआ किया करें, अल्लाह मुझे अपने ख़ानदान का वो शख्स बना दे कि जो सारे ख़ानदान को हिदायत पे लगा दे, मुझे अपने शहर का, मुझे अपनी दोस्तों का इमाम बना दे, मुझे ठीक तरफ ले जाने वाला बना दे। देखिएगा भाग दौड़ कैसी मुतमईन हो जाएगी, दुनिया राजाती पड़ी भी मिल जाएगी। और देखिए उनकी खूबी, हाल क्या था उनका। अब दुनिया में किसी को बहुत मिल जाए ना तो अकड़ ही नहीं ख़त्म होती, लेकिन उनका हाल, इस काल अलहु रब हो असलम काल असलम तुली रबिल आलमीन। उसका हाल तो ये था कि जब इसके रब ने इससे कहा मुस्लिम हो जा, तो इसने फौरन कहा मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। उबे किया, सबमिट किया, सरेंडर किया। ये नहीं कहा आज बड़ा मसरूफ हूँ, आज बिजी हूँ, आज तबीयत नासाज है, अच्छा थोड़ी देर बाद कज़ा नहीं की नमाजें, डिले नहीं की नेकियाँ, नेकियों के मौके को ज़ाया नहीं किया, रेजगारी समझ के छोड़ नहीं दिया। ये है कामयाबी का गुर। छोटी नेकी का मौका है कर लीजिए, अल्लाह बड़ी नेकी ले आएगा। पीछे आप पढ़ चुके ना, हातत बिहिम खतीयतुहुम, एक गुना करेंगे ना अगले गुनाहों का रास्ता खुल जाएगा, और एक नेकी करेंगे अगली नेकी का रास्ता खुल जाएगा। एक छोटी सी नेकी आप किसी के साथ करते हैं, अल्लाह 6 लोग आपके साथ नेकी करने वाले पैदा कर देता है। तो खूबी ये है असल में, जब अल्लाह कहे तब मानो। हम क्या कहते हैं, जब मेरी मर्जी होगी तब करूंगी, जब मुझे सहूलत होगी तब करूंगी। तो यहां मुहासबा भी करने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, मैं तो मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया, इसी तरीके पर चलने की हिदायत इसने अपनी औलाद को की थी। ये है अकलमंद लोग, अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने बच्चों की भी कर दीजिए, ये शर्त है। हमारा बहुत सारा वक्त बच्चों की फिक्रें ले लेती हैं, बच्चों की जिंदगी, उनके रिश्ते, उनकी तालीम और फिर उनकी बेहिदायती और उनका फिर दीन से दूर होना, सब का बेहतरीन इलाज अपनी जिंदगी में बच्चों को नेकियों के मौकों में साथ रखें और तन्हाई बन के लिए दुआएं करें। उठिए तहज्जुद में, कहें अल्लाह मेरे बच्चों को चुन जैसे तूने इस्माइल को चुना इब्राहिम के साथ। इस्माइल में क्या खूबी थी, अभी बच्चा था लेकिन बाप अच्छा मिल गया। कड़वी बात है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अक्सर बच्चों को अच्छे बाप नहीं मिले और अक्सर बेटियों को अच्छी माएँ नहीं मिली, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरीके पर चलने की हिदायत इसने अपनी औलाद को की थी, तो मुहासबा कर लीजिए क्या मैं अपनी औलाद को भी इन्हीं तरीकों की हिदायत करती हूँ। आप कहेंगे जी ये इसी में तो खपते हैं, खपने की जरूरत नहीं है, हर वक्त ही कहते हैं। सॉरी, हर वक्त कहने का काम ही नहीं है, बर वक्त कहिए, करके दिखाइए। आप रोए जाके अपने बच्चों के सामने, हाथ पकड़े, प्यार करें, मुंह चूमे, गले से लगाए, मेरे बच्चे मुझे तेरे बगैर मजा नहीं आता, मेरी बेटी तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। और कितने मुतमईन बैठते हैं, हम कहते नहीं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, जल्दी से उठते हैं, यानी गोया के बस ये जब दुनिया के कामों से फारिग होंगे फिर देखेंगे। मुतमईन बैठे हैं हम इस बात पे कि अभी तक हमारे बच्चों ने कुरान नहीं पढ़ा, मुतमईन बैठे हैं फजर में नहीं उठे, कोई बात नहीं अभी घंटे बाद उठेंगे स्कूल जाने फिर पढ़ेंगे। अंदर एक इत्मीनान पड़ा हुआ है कि अभी दुनिया भी तो ले लें, सारी दुनिया ले लेंगे, उसके बाद इनको इंशाअल्लाह ताला सिखाएंगे बहुत कुछ। नहीं, साथ साथ चलेगा। पौधा जब पक्का हो जाता है ना तो उसको मोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बाप के बाद बेटे का तस्करा, इब्राहिमी की नस्ल में से एक बेटा याकूब, उसका भी जिक्र सुन लीजिए। और ये असल में हमारे आज के टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि वक्ते रुख्सती हम क्या कर रहे होंगे, जब हमारी मौत का वक्त आएगा तो उस वक्त हमारी क्या फिक्रें होंगी। आइए इसको देखते हैं। अम कुंतुम शुहदा इज हदर याकूब अल मौत, और इसी की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गए। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे? उन्होंने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बेटो मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? मौत के वक्त अमूमन किस चीज़ की फिक्र लगी होती है जो बहुत अहम होती है, जो जान का रोग है? बेटा शादी किधर करोगे, मेरी चूड़ियाँ कौन लेगा, मेरे कड़े कौन पहनेगा, मेरा फलां घर किसके नाम जाएगा? वल्लाह ही मरते वक्त भी दुनिया ही बांट रहे होते हैं या रिश्ते ही जोड़ रहे होते हैं, एक रिश्ता कटा हुआ औलादों का उसका फिक्र नहीं है। बाप बिस्तरे मर्ग पे सारी जिंदगी बच्चों को साथ लेकर नेकियां करता रहे, अब गम क्या है कि कहीं ये मेरे कहने पे तो नहीं करते थे, तो मेक श्योर कर रहे हैं कि मेरे बाद कहीं बदल तो नहीं जाएंगे। आप जरा जवाब सुनिए। और मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ जो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि कितने सुकून की मौत आई होगी हजरत याकूब को अपने बेटों का ये जवाब सुन के, कालू नाबुदु इलाह कविलाह आबाइक। वो सब बोले, अब सबका जवाब सुनिए, क्योंकि एक भी बिगड़ जाए ना तो वो सारों की खुशी खत्म कर देता है। खुदा ना खास्ता हमारा एक बच्चा बिगड़ गया तो वो जान का रोगी बन जाएगा। तो सब बोले, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना, और हम इसी के मुस्लिम हैं। अब्बा जी सुकून की मौत मरें, हम आपके कहने पे तो ला इला नहीं कहते थे, ये तो हमारे दिल की पुकार थी, ये तो हमारे अंदर की आवाज थी, हम कोई मुस्लिम बाय चांस तो नहीं थे, हमने तो अपनी चॉइस से इस्लाम कबूल किया है, आप फिक्र ना कीजिए। क्या मैं और आप अपनी मौत के वक्त ये जुमले नहीं सुनना चाहते? क्या हमने अपनी औलाद को तैयार कर दिया कि बेटा जब मेरी मौत का वक्त आएगा तो उससे पहले तुम ये चंद बातें सीख लो, अपनी जिंदगी में औलादों की फिक्र कीजिए। और यहां फिर एक जुमला बोल दूं, अक्सर लोग ये कहते हैं हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, आज इसको जुम बदली है, कड़वा जुमला है, अल्लाह ना करे किसी को बच्चों का सदमा आए, लेकिन ये पूछिए अगर हमारे बच्चे मर गए या हमारे बच्चों में से कोई अचानक मर गया, उसके साथ क्या होगा? क्या हमारे बच्चे मरने के लिए तैयार हैं? क्या हमने सोचा हुआ कि पहले हम ही जाएंगे? क्या कभी आपने किसी बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा नहीं देखा? कभी किसी बूढ़ी माँ को जवान बेटी को गुस्ल देते नहीं देखा? अल्लाह इनको जिंदगियां दे, मत सोचिए कि पहले आप जाएंगे, अल्लाह करे दोनों ही ईमान में जाएं जब भी जाएं। किसी को औलाद का गम अल्लाह ना दिखाए, औलाद के मरने का गम छोटा और उनके बेहिदायता होके मरने का गम बड़ा। ये गम लगाने की जरूरत है। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा माँ कसबत वलकुम माँ कसबतुम। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए। किसी की नेकियां दूसरे के काम नहीं आएंगी। ये विरसे में नहीं चलता कि बाप की नेकियां भी बेटों को विरासत में बांट दो। दौलत तो बांट देते हैं आप बेटी को बेटे को, नेकियां नहीं बढ़ती। याद रखिए, नेकी खुद कमानी पड़ती है। जो वो कर चुके वो उनके लिए और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, तो इससे क्या पता चलता है कि हर बात को मेक श्योर कर लो। बस लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग बड़े नेक थे ना, वही हमारे काम आ जाएंगे। हम नबियों की नस्ल से, नबियों की औलाद से, फुलां से फुलां। अल्लाह कहते हैं दूसरे की नेकियां तुम्हें काम नहीं आएंगी। फिर इसके बाद दोबारा उन्हीं की चंद बातों का तस्करा जिनका तस्करा पीछे पड़ा। वकालु कूनु हूदन अव नसारा तहतदू। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास्त पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। यानी हर एक कहता है हमारे गिरोह से ताल्लुक जोड़ो फिर हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका। आप समझ आए आपको कि इब्राहिम का जिक्र क्यों आ रहा था? कि अपने नामों पे फख्र करने को छोड़ो बल्कि इब्राहिम के तरीके को अपनाओ। ये है असल में हमारा दीन, ये है असल में हमारे दीन की खूबसूरतियाँ। और वो क्या हैं कि हम शख्सियात पे उलझने की बजाय उनके तरीके को अपनाएं। जो काम उन्होंने किए, जिससे उनको इज्जत मिली, जिनसे उनको मोहब्बत मिली, वो काम कर लो। फरमाया सब छोड़ दो, इब्राहिम का तरीका अपना लो। और इब्राहिम मुशरिकों में से न थे, यानी इब्राहिम ने कभी शिर्क नहीं किया। और मुसलमानों कहो क्या हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई और जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलादे याकूब की तरफ नाजिल हुई थी और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगंबरों को इनके रब की तरफ से दी गई थी। हम इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। अब यहाँ देखिए कि इब्राहिम का तस्करा पूरा होता है। मुझे तो हसद तो नहीं कहना चाहिए, रश्क बहुत आता है। जब भी मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ा या पढ़ाया, मेरे दिल में एक ख्वाहिश जरूर आई कि अल्लाह मुझे जन्नत में इनसे मिलवाना जरूर। फिर पूछूंगी कि सुनाए दिल पे क्या बीती थी जब बचपन में बाप ने घर से निकालने की धमकियां दी थी। हम कहते हैं हम नेकी करें बट हमारा खानदान हमें बुरा ना कहे, हमारे घर वाले हमें कुछ ना कहें, हमारे शौहर हमसे बड़े खुश रहें, हमारी सारी दोस्तें के हाँ तुम कितनी अच्छी लग रही थी ना फलां काम करती हुई, फिर करेंगे। और जहां बात आ गई दूसरी छोड़ देंगे। याद रखिए, चंद पॉइंट्स लिख लीजिए, जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, अब इसको मैनेज करें। इब्राहिम को जो इतनी ऑनर मिली, इसमें सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जात बिरादरी की परवाह नहीं की। खानदान क्या कहेगा? हम यकीन कीजिए 80% गुनाह बिरादरी, खानदान और दोस्तों के नाम पे करते हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? अकेले में नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं। जहां कोई ऐसा मुतालबा आ जाता है फैमिली का, वो नहीं छोड़ सकते। कहते हैं फिर लोग क्या कहेंगे, फिर बातें होंगी ना, फिर हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे ना, फिर कट के तो नहीं रह सकते क्या? कट के मरना है किसी के लिए? आग में जाना है किसी की खुशी के लिए? यदि आप एक बात नोट करें, अभी तो आज जिक्र शुरू हुआ है और आपको तो 30वें पारे तक इब्राहिम का तस्करा चलेगा। हर जगह आपको ऐसे लगेगा पहली दफा सुन रहे हैं। मैंने पढ़ा है पहले भी कुरान, आप में से भी बहुत सारों ने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। एक भी कुरान की आयत, कोई टुकड़ा और हदीसें मुझे नहीं मिला। होगा अगर है सही हदीस, मुझे नहीं पता, जिसमें इब्राहिम की नमाज का जिक्र हो, वजीफों का जिक्र हो, कोई पढ़ने पढ़ाने का जिक्र हो। करते थे, कोई उनकी इबादत का ऐसा तذکرہ कि जिसके साथ ही ज़हन में आ जाता है कि वाकई इस वजह से चुने गए। जहां पड़ा है मैंने इब्राहिम का, अल्लाह के दीन के लिए तड़पना देखा है और दीन पे जमना देखा है, वक्त के बहाव से उलट चले। हम कहते हैं सब चल रहे हैं हम भी जाएंगे, तो फिर आपने किया क्या? ये तो सभी कर रहे हैं, आप करेंगे तो क्या बड़ी बात होगी? वक्त के रुख से पलटे। अमीर खानदान, वजीर के बेटे थे, उर नाम का शहर में इनका बाप बादशाह का पुरोहित था, लेकिन इब्राहिम को अल्लाह ने हक दिखा दिया, वो नहीं हिले। आज ऐसी औलाद को लोग कहते नाफरमान, खुद सर सर फिरी मोजोर। इब्राहिम ने परवाह नहीं की, हक नजर आ जाए फिर छोटे बड़े की तमीज नहीं है। फिर आप देखिए जिस उम्र में जिस कुर्बानी का मौका आया वो की। बचपन में बाप प्यारा होता है, खानदान प्यारा होता है, उसको छोड़ा। जरा बड़े हों तो बिरादरी दोस्त अहबाब, उनको छोड़ा। जरा से जवान हुए बीवी की आजमाइश आ गई, और बुढ़ापे में औलाद प्यारी होती है तो औलाद की गर्दन पे छुरी फेर दी। कौन सी कुर्बानी है जो इब्राहिम ने नहीं दी? वह इस काल लहो रब्बहु अस्लिम काल असलम तो ले रब्बिल आलमीन। ये है जिंदगी, इसको कहते हैं क्वालिटी लाइफ। मैं जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ ना, तो मेरे जहन में जो पर्सनैलिटी आती है वल्लाही वो इब्राहिम आते हैं। क्या खूबसूरत तरीके से जिंदगी को मैनेज कर गए। हम सारी जिंदगी पोस्टपोन करेंगे, अभी नहीं, जरा करते हैं, जरा ये हो जाए, ये बच्चा बड़ा हो जाए, अच्छा स्कूल चले जाए, अच्छा जरा कॉलेज में जाए, अच्छा शादी कर दूं, शादी नहीं अब इसका बच्चा हो गया, पोते को खिला लूं। करे जहां दराज अब मेरा इंतजार कर। जिंदगी में सारे तकाजों को साथ लेकर चले, इस्लाम रोकता नहीं है, और मेरा ईमान है कि अल्लाह के दीन का कोई तकाजा आपको आपके घर और आपकी जिम्मेदारियों से फारिग नहीं करता। मैं अगर इधर बैठी हूं तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं बीवी होने के सारे जिम्मेदारियां भूल जाऊं, और जो मेरे ऊपर मेरी जाती जिंदगी की बातें उसको मैं भूल जाऊं। वो सब करते हैं लेकिन मकसद नहीं है। किसी को परवाह हो ना, हम अपनी जात पे वो काम इतने सवार कर लेते हैं कि हम पढ़े रहते हैं, अपनी नमाजें छोड़ते हैं, किचन साफ करते रहते हैं। तो जिंदगी को मैनेज कीजिए। फिर आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जिंदगी में चूंकि आजमाइशें बड़ी आई ना, तो उतनी भी नेमतें ज्यादा मिली। आज अगर अल्लाह के लिए आपको मुश्किलात पड़ी रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो इम्तिहान थे ना इब्राहिम के, सबसे पहले तो अकल का इम्तिहान था। कुफर और शिर्क के माहौल में अल्लाह ने इनको तौहीद पे जमाया। फिर इनकी हिम्मत और इरादे का इम्तिहान था, बादशाह के सामने डट के। भी तीसरे पारे में आप इनके वाकयात फिर पढ़ेंगे। फिर इसी तरह सबसे बड़ा इम्तिहान इब्राहिम का मोहब्बतों का इम्तिहान था, जिसमें हम में से अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। हम अपने प्यारे रिश्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर रिश्ते में कामयाब हुए। फिर आपने एक और चीज़ हजरत इब्राहिम के साथ देखी होगी कि बच्चों के लिए दुआएं करते हुए दुनिया भी मांगी, आखिरत भी मांगी, फल भी मांगे, फ्रूट भी मांगे, सब कुछ मांगे। तो क्या पता चला कि बच्चों के लिए दुनिया मांगे गुनाह नहीं है, बट सिर्फ दुनिया ना मांगे। आज कुछ माँ बाप का हाल क्या है कि वो बच्चों की दुनिया बनाते बनाते उनकी आखिरत को बिगाड़ देते हैं। मांगिए बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते, मांगिए तालीम दिलवाइए, बट सिर्फ दुनिया मांगना ये बहुत मुश्किल चीज है। अब इसके बाद पारे का आखिरी हिस्सा है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि क्रीम ऑफ दी पारा। चंद आयते हैं लेकिन इसके अंदर भी एक समंदर भरा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हट धर्मी में पड़ गए। लिहाजा इत्मीनान रखो कि इनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। यानी अब सब की बातें छोड़ दो, पीछे फिरकों की बात हो गई, सब बातों को छोड़ दिया, नबियों की जुबान से कहलवा दिया नहनु लहू मुस्लिमून। अब इसके बाद कहा करो क्या, ईमान लाना है, इन लोगों जैसा ईमान लाओ, इब्राहिम जैसा ईमान लाओ, या बाद वालों जैसा लेकर आओ, और खुद को किस रंग में रंगो। फरमाया फसयकफीकहुमुल्लाह, इस रास्ते में जो मुश्किल आएंगी तो अल्लाह तुम्हारी हिदायत के लिए काफी होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी हिमायत के लिए काफी होगा। वहुव समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आपको मुझे जो पैगाम दिया जा रहा है इस पारे के एंड पे, वो क्या है? सिबगत अल्लाही व मन अहसनु मिन अल्लाही सिबगा। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और इसके रंग से अच्छा रंग और किसका होगा, और हम इसी की बंदगी करने वाले हैं। कैसे? व नहनु लहू आबिदून, और हम इसी की बंदगी करने वाले हैं। ये कौन सा रंग है? ये रंग की बात क्यों आती है? आप देखिए कि सीधी सी बात है, मैं अगर आपको इसको एक जुमले में कह दूँ ना, तो सिबगत अल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह जैसा चाहता है उसी रंग में रंग जाओ, डूब जाओ अल्लाह के रंग में। ये ना करो कि तुम्हारी मस्जिद का दीन कुछ और, रमजान का दीन कुछ और, गैर रमजान का कुछ और, खुशियों में तुम कुछ और रंग दिखाते हो गिरगिट की तरह, गमों में तुम किसी और रंग में ढल जाते हो। नहीं, सिबगत अल्लाह क्या है, पूरे का पूरा डूब जाए रंग का। ज़हन में आ रहा तसव्वुर, अब तो ना दुपट्टे रहे और ना दुपट्टे रंगने वाले रहे। पहले कभी आपने खुद देखा होगा दुकान के बाहर खड़ी हुई औरतें दुपट्टे रंगाती थी, डायर से कभी रंगवा के देखे। यहां उसी को जहन में ले आइए, जब दिल में ईमान आता है ना, तो इसका रंग चेहरे पर, हाल हुलिये पर, रहन सहन में, खुशी और गम से झलकता है। फिर आपके मामलात अल्लाह वाले, आपकी आदत अल्लाह वाली, आपके रुए रुए में अल्लाह की मोहब्बत सिरायत करती है और आपका अमल उसकी गवाहियां देता है। और ये रंग चढ़ाना कैसे है, वही तरीका है जो रंगने वाले का है। पहला रंग काटिए, सब्ज के ऊपर नीला रंग चढ़वाना हो तो डायर पहले ब्लीच डालता है, फिर सफेद करके फिर चाटता है, वरना तो वो पता नहीं नीला पीला कुछ और ही बन जाएगा। हम जिस दुनिया में जीते हैं, हम पे बहुत सारे रंग होते हैं, मुआशरे का, खानदान का, बिरादरी का रंग, उसको बदलना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रंग को पकाना पड़ता है ना, कच्चा रंग होता है वरना, तो कुछ मुश्किल तो आएंगी। हमारे दोस्त, हमारी साथी, हमारे सोसाइटी एकदम नहीं कबूल करेंगे हमें। आप कहें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी का बनने के लिए मुझे किसी भट्टी से गुजरना भी पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। फिर इसके बाद एक जुमला लिख लें, कुफर का रंग निकाले बगैर अगर इस्लाम का रंग चढ़ाएंगे तो निफाक का रंग बन जाएगा। जैसे पीले दुपट्टे पे नीला रंग डालें तो वो सबज बन जाता है। कुफर के तरीके और उन सारी चीजों को एक एक करके निकालते जाएंगे, इंशाल्लाह तला उससे निकलेंगे। और मुझे तो लगता है यही या का नाबुदू का रंग है, बस अल्लाह ही अल्लाह। तकवा अल्लाह का रंग चढ़ाने वाला केमिकल है, जितना तकवा मजबूत उतना ये कुछ होगा। पीछे आपने देखा मुस्लिमून था, अब यहाँ आबेदून है, आगे मुखलिसून आ रहा है। दिन ब दिन ये रंग गाढ़ा होगा। फिर आपने देखा होगा डायर कपड़े को बार बार पानी में डिप करता है, फिर सुखाता है, फिर उसका सैंपल चेक करता है। हमारा सिबगतुल्लाह का रंग का सैंपल क्या है, अल्लाह और उसका रसूल, उसकी बात, काल अल्लाह और काल रसूल। फिर कभी आपने देखा होगा टाई एंड डाई कपड़े रंगते हुए कुछ हिस्से को छुपा लेते हैं, उस पर वैक्स लगा देते थे, फिर उधर रंग नहीं चढ़ता तो दूसरा हो जाता है। इसी तरह हमारा जो अमल इस्लाम के अमल से बाहर होगा, वहां इस्लाम का रंग नहीं आएगा। यक रुखा, फोकस्ड, कलरफुल कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक दफा धोएंगे कोई भी रंग नहीं सलामत रहेगा। तो जब तक आप और मैं अपनी जिंदगी को पूरे फोकस होकर अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलाएंगे, हम ये खुशी और ये सुकून महसूस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि सिबगत अल्लाह का रंग वो था जिस रंग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम रंगे हुए थे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और आखिर में फरमा दिया, कुल तुहाजूनना फिल्लाह, ए नबी इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में तुम हमसे झगड़ते हो, हालांकि हम वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, हमारे अमल हमारे लिए, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना ये है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलादे याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे, फिर का बराना नाम, कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो इसे छुपाए। तुम्हारी हरकात से अल्लाह गाफिल तो नहीं, वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, इनकी कमाई इनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे इनके अमाल के बारे में सवाल नहीं होगा। तो ये थी आज की आयत। हमें क्या दिया इन आयत ने, ये अब हम खुद से पूछें। मुहासबा कर लीजिए अपना, हम दूसरों का मुहासबा करते हैं, हालांकि उससे बेहतर हम अपना मुहासबा करें। इंशाल्लाह ताला आज से सफर शुरू करेंगे, आप देखेंगे हर दिन हमारी जिंदगी का बेहतर दिन होगा। और इंशाल्लाह ताला हम अपने वर्क को इतना अच्छा मैनेज करेंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ तकरीबन, चले आने जाने को भी मिला लें, 3 घंटे आप जो देते हैं, इससे आपके बाकी वक्त में कितनी बरकत हो जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون